ओम शांति। सब कैसे हैं आज? एकदम बढ़िया। अच्छा लग रहा है यहाँ ज्ञान सरोवर में? बहुत अच्छा लग रहा है। कल साइट सीइंग के लिए गए थे ना, पांडव भवन गए थे, ग्लोबल हॉस्पिटल देखा, सब देखा है ना। तो यहाँ जो भी कैंपसेस देखा सब जगह में, तो एक कौन सी बात है जो कॉमन है और अच्छी लगी? सेवा, सेवा भाव और पीसफुल है और क्लीनलीनेस है। प्यार बहुत है ना, और सेवा भाव है और वातावरण में क्या है, फ्रेशनेस है, ओके, शांति है, सब जगह पे बाबा का रूम है, हो तो होना ही है, राइट, पॉजिटिव वाइब्रेशन। और ये सब का कारण क्या है? पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, क्लीनलीनेस है, सेवा भाव है, प्यार है, तो इन सभी का कारण क्या है? खुशी है, खुशी भी है, लेकिन खुशी का भी कारण क्या है? अनुशासन है, अनुशासन का भी कारण क्या है? एकमत, एकमत का भी कारण क्या है? मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन के कारण से ये सब कुछ है ना। परमात्मा स्मृति भी तब आएगी ना जब मेडिटेशन है, कनेक्शन है, परमात्मा के साथ कनेक्शन है, तभी तो ये सब कुछ हो रहा है। स्नेह भी दे रहे हैं तो फिर अपना अपने अपना तो स्नेह नहीं है ना, तो इतना स्टॉक कहाँ है हर एक के पास स्नेह देने के लिए? कनेक्टेड है ना, तो इसीलिए परमात्मा का जो स्नेह है, परमात्मा की जो शक्तियां हैं, वो तो खान है, वो तो सागर है, अनलिमिटेड है। तो जब उनके साथ कनेक्ट होते हैं ना, गायत्री बहन आप बात करेंगे तो बाहर जाएंगे प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ। तो ये कनेक्शन जो जोड़ते हैं तभी तो ये सब कुछ अंदर स्टॉक है, तो स्टॉक है तभी तो हम दूसरों के साथ बांट सकते हैं, और जितना बांटेंगे उतना फिर बढ़ेगा है ना, ये नियम है। लेकिन फिर खुद में वो भरने की बात है, खुद में अगर स्टॉक है तभी तो हम दूसरों को दे सकते हैं, राइट। और मेडिटेशन से प्राप्तियां क्या क्या है ना, इतना सारे लिस्ट आपने अभी बोला, ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, तो ये सब मेडिटेशन से प्राप्तियां है ना। तो और भी कुछ प्राप्ति है, तो आप सभी यहाँ आए हैं मेडिटेशन सीखने के लिए, राइट। तो मेडिटेशन क्यों करना चाहते हैं? मन की शांति के लिए और सेल्फ प्रोग्रेस के लिए, खुशी के लिए, मैनेज करने के लिए, मैं कौन हूँ जानने के लिए, बस। मेडिटेशन के जो प्राप्तियां ना बहुत ज्यादा, किस जान करके करेंगे क्या, जानने के बाद फिर उसको डेवलप भी करना है ना, सिर्फ जानने से वो नहीं पूरा नहीं होता, जान करके फिर उसको निरंतर फिर उसको भरना है ना, भरना है अपने अंदर। और क्या, आप आत्मिक भाव में भी क्यों रहना चाहते हैं? आत्मा को शुद्ध करने के लिए, राइट, और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, स्ट्रांग बनने के लिए, आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए, है ना। तो इन सभी कारणों, परफेक्शन से करने के लिए, एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, ये सब कुछ लाने के लिए मेडिटेशन सीखना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मानसिक विकारों को कम करने के लिए। बहुत लंबा लिस्ट होता जा रहा है चलिए अभी हम देखते हैं, क्योंकि ये सब कुछ तो प्राप्त है। बेसिक जो इन सभी का सार ये है कि हर एक को जीवन में सुख और शांति चाहिए, राइट? क्यों, कोई ऐसा है किसी को सुख और शांति नहीं चाहिए लाइफ में? कोई नहीं है ना, सबको सुख शांति चाहिए। लेकिन सुख शांति की अनुभूति करने के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत होती है, जैसे कि शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है, हेल्थी फूड है, हेल्थी एक्सरसाइज है, ये सब कुछ है। लेकिन जितना हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ता जाएगा उतना शरीर हेल्दी होता जाएगा। जितना इम्यूनिटी पावर ज्यादा है तो फिर भले कितने भी आप जर्म्स के बीच में, डस्ट के बीच में, इसमें वायरसेस के बीच में जाए तो भी उसका इफेक्ट पड़े, एटमॉस्फेयर में भले वो सब कुछ है, उसका प्रभाव मेरे शरीर पर क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि मेरे शरीर का जो रोग प्रतिरोधक शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो 100% है, ज्यादा है, तो उसके लिए उसको प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अभी कलयुग की दुनिया है, यहाँ तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है कि शांति है, सब प्यार से बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वापस जाने के बाद वही बिजी, वही टेंशन, वही बातें, सब कुछ आएगा, और कलयुग की दुनिया है। तो बाहर तो एटमॉस्फेयर में वायरस है नेगेटिविटी के, है ना, नेगेटिविटी के, वेस्ट के, सब कुछ है एटमॉस्फेयर में, तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। तो अभी हम ये कहें कि दूसरा जब तक मेरे से प्यार से बात नहीं करेगा तो मैं भी प्यार से नहीं बात करूं। एटमॉस्फेयर में शांति होनी चाहिए, जब मैं तब मैं शांत हो सकता हूं, हो सकती हूं। तो जो दूसरे जब देंगे या फिर ऐसा वातावरण बनेगा तब मैं शांत होंगी या सुखी होंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि विपरीत तो जाएगा ही एटमॉस्फेयर। तो उसमें भी रहते हुए हमारा आत्मा का जो इम्यूनिटी पावर है ना, उसको हाई रखते हैं तो क्या होगा, उसका प्रभाव आत्मा पर नहीं पड़ता, है ना। तो इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाएं आत्मा की, और इम्यूनिटी पावर है क्या चीज आत्मा की, तो वो है अष्ट शक्तियां। तो मान लीजिए आपका निर्णय करने की शक्ति नहीं है, तो क्या आप सुखी और शांत रह सकते हैं? कंफ्यूज्ड रहेंगे, ये करना है वो करना है, ये करना है वो करना है, कंफ्यूज्ड रहेंगे, है ना। तो अगर अपने पास सहन करने की शक्ति नहीं है तो छोटी छोटी बात में रो पड़ते हैं, छोटी छोटी बात में परेशान हो रहे हैं, चुई मुई, टच मी नॉट, है ना, टच हो गए मुरझा गए, ऐसा हो जाता है, सेंसिटिविटी बढ़ जाता है, सहन शक्ति नहीं है, है ना। पावर टू कॉपरेट, सहयोग करने की शक्ति नहीं है तो मुझे भी सहयोग नहीं मिलेगा। तो ये सारी शक्तियों की जरूरत है मुझ आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करने के लिए, है ना। वो आंतरिक शांति की, आंतरिक शक्तियों की जरूरत है, वो है अपना इम्यूनिटी पावर। आंतरिक शक्ति का मतलब केवल विल पावर की बात नहीं है, तो इन अष्ट शक्तियों की बात है। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में, अभी तो कल से नवरात्र शुरू हो रहा है, तो नवरात्रि के दिनों में क्या करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं और देवियों को अष्टभुजाधारी दिखाते हैं, है ना। तो ये अष्ट एक एक हाथ में एक एक शस्त्र दिखाते हैं और असुर संहार के लिए उन शस्त्रों का प्रयोग करते हैं। अभी हम भी, हमारे पास भी शस्त्र है, ये अष्ट शक्तियां हमारे शस्त्र है, उनको यूज करते हुए हमें अपने कर्म क्षेत्र पर विजयी होना है, है ना। वही हमारा कुरुक्षेत्र है, कोई ऐसे विकराल रूप से असुर नहीं है जिनको हमें संहार करना है ना। असुर कौन है, कौन से असुर है जिनका संहार करना है मुझे? अपने ही अंदर छिपे हुए नेगेटिविटीज, विकार और नकारात्मक भावनाएं, वेस्ट बातें, तो उनको संहार जब हम करेंगे तो हम आत्माएं शक्तिशाली बन सकते हैं, है ना। और ये जो शक्तियां है ना अपने पास ऑलरेडी है, ऐसा नहीं कि मुझे परमात्मा से लेना है, नहीं, ऑलरेडी परमात्मा ने दिया हुआ है हमें, केवल उनको समझते हुए मुझे यूज करने की जरूरत है। अगर मान लीजिए आपके पास तलवार है लेकिन तलवार चलाना ही नहीं आता, तो वो शोभा के लिए दीवार पर लटका हुआ है बस, आते जाने आने जाने घर में आने जाने वालों को लग रहा है कि बाप रे इनके पास तो तलवार है, बहुत पुराना एंटिक पीस है इनके पास, बहुत अच्छा है। रोज क्या करते हैं, उनको निकालते हैं, पॉलिश करते हैं, शार्प करते हैं, करके रख देते हैं, लेकिन यूज करना ही नहीं आता है। जब समय पर मुझे यूज करने की बात आती है तो मैं यूज ही नहीं कर सकती हूँ, है ना। तो हर एक के पास ये शक्तियां हैं, केवल उन लोगों को उसको समझते हुए उसको जितना मैं यूज करती जाऊंगी ना उतना उसके अंदर जौहर बढ़ता जाएगा और फिर समय पर मैं ऑटोमेटिकली उसको यूज कर सकती हूँ। तो वो अष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं जो ये इस चित्र में देख रहे हैं? विस्तार को संकीर्ण, कछुआ देख रहे हैं, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ और फिर पावर टू पैकअप। अब स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, बहुत छोटा है ये। सहन करने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है और सहयोग की शक्ति है ना। ये अष्ट शक्तियां आत्मा के अपनी शक्तियां हैं। तो एक एक शक्ति को हम देखेंगे, है ना। सबसे पहले जो कछुआ देखा था, पावर टू विड्रॉ, है ना। पावर टू विड्रॉ माना विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। कछुए की विशेषता क्या है? हाँ, अपने कर्मेंद्रियों को वो अंदर ले लेता है जब भी डर लगता है उसको। क्यों? क्योंकि उसका ऊपर का जो शेल है ना वो बहुत हार्ड है। हार्ड होने के कारण से उसके ऊपर पत्थर भी फेंको, कुछ भी करो, उसको कुछ नहीं होता, सुरक्षित महसूस करता है वो अंदर जा करके, है ना। अपने पास भी वो ताकत है, सुरक्षित जगह है। और वो सुरक्षित जगह कौन सा है? अपना आत्मिक स्थिति। जब सब कर्मेंद्रियों को विड्रॉ करके फिर मैं अपने आप को आत्मा समझती हूँ, दैट इज द सेफेस्ट प्लेस टू बी इन। क्यों? क्योंकि बाहर का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा इतना सशक्त हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है, नेगेटिविटी का प्रभाव आत्मा पर पड़ती नहीं है, क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित है, है ना। तो लेकिन वहां जाना मुश्किल है, लेकिन एक बार स्थित हो गए ना तो वहां फिर वो सुरक्षित जगह है। जैसे सागर में जब तूफान उठता है ना, बॉम्बे वाले, तो तूफान जब उठता है तो आपको पता है कैसे होता है, वो है ना ऐसे स्पाइरल मूवमेंट होते 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 आगे जाता है, लेकिन शिप उसके चपेट में आ गया तो क्या होगा, वो डूबना तो निश्चित है, है ना। लेकिन वो कैप्टन क्या करता है? कैप्टन कोशिश करके उसके तूफान के बीच में ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में ले जाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो जो स्पीड है ना, अंदर का जो स्पीड है वो ज्यादा है, बाहर का स्पीड थोड़ा कम है, है ना। तो लेकिन अंदर जाते जाते वो स्पीड ज्यादा बढ़ेगा तो फिर मुश्किल है, लेकिन वो बीच में पहुंच जाए वो एकदम शांत है वहां, जिसको आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, तूफान की आंख कहते हैं, वो एकदम शांत है, एकदम सन्नाटा है, चारों तरफ तूफान है, लेकिन शिप वहां सेफेस्ट रह सकता है। ऐसे ही कलयुगी दुनिया में हमारा चारों तरफ क्या है? तूफान है, स्टॉर्म है, परिस्थितियों के, प्रॉब्लम्स के, संस्कारों के टकराव के, नेगेटिविटीज के, बहुत सारी बातें हैं, है ना। तो ये तूफान तो चलना ही है, लेकिन उसके चपेट में आ गए ना, अरे इसने ऐसा किया, ये हुआ, वो हुआ, उसमें ही लगे रहेंगे, तो फिर उसमें हमारी एनर्जी पूरी तरह डूब जाता है। तो इसीलिए वहां से निकाल करके जब हम अपने मन और बुद्धि को केंद्रित करते हुए अपने आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं ना, तो वो एकदम एनर्जाइजिंग है, आत्मा को एनर्जाइज करता है और पावरफुल। तो इसीलिए बीच बीच में यहाँ ट्रैफिक कंट्रोल रखते हैं ना, बीच बीच में क्या करो कि कर्मेंद्रियों को विड्रॉ करते हुए एक दो मिनट भी मैं अपने आप को आत्मा समझ करके मेडिटेशन किया ना, तो फिर वो एनर्जाइज हम अपने आप को कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, आत्मा को ड्रेन आउट होने में होने से बचाता है ये पावर टू विड्रॉ। क्योंकि हमेशा हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं ना, हमेशा जो मन है बाहर मुक्ता है, बाहर मुक्ता माना मेरे कर्म के बारे में, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, लोगों के बारे में यही सोच रहे हैं। बाहर मुक्ता होने के कारण से फिर वो आत्मा की एनर्जी डिनोट होता है। तो इसीलिए अंतर्मुखी, अंतर्मुखी माना आत्मचिंतन, आत्मचिंतन जब हम करेंगे तो फिर एनर्जी बढ़ता जाएगा। तो इसलिए बीच बीच में कर्म करते समय भी पावर टू विड्रॉ को हम यूज करते चले, है ना, बहुत इफेक्टिव है। और नेक्स्ट पावर है पावर टू पैकअप, है ना। इस चित्र में क्या देख रहे हैं, एक ट्रैवलर है अपने बैग लेकर के जा रहा है। और जब भी ट्रैवल करते हैं, आप भी तो ट्रैवल करके आए हैं बॉम्बे से, है ना, तो आपका लगेज कितना है? एक सूटकेस, दो सूटकेस, तीन सूटकेस, पांच, दस, कितना है? एक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक सूटकेस, एक बैग छोटा सा, राइट, इतना ही होता है। तो ज्यादा क्यों, थोड़ा बहुत ज्यादा लेके आते, एक और सूटकेस एक्स्ट्रा लेके आते लगेज, थोड़ा कंफर्टेबल रह सकते थे ना, नहीं कंफर्टेबल नहीं होता है अगर एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत लेके आए, कैरी करना पड़ता है। आप ट्रेन से आए या फ्लाइट से आए? ट्रेन से आए ना, तो ट्रेन में तो अनलिमिटेड है कुछ भी ले ना, फ्लाइट पे तो लिमिट हो जाता है ना, तो ट्रेन से तो फिर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ले ही आ सकते हैं, तो कूली कर लेते हैं, तो क्यों नहीं लाते, बोझ हो जाता है, बोझ आपको थोड़ी उठाना है, दूसरा कोई उठा लेगा, फिर भी खुद को संभालना पड़ता है, राइट। तो एक सूटकेस की जगह पर अगर दस, मान लो अगर कुछ कारण से कुछ सामान बढ़ गया, कुछ इधर लाना था, तो फिर दस सूटकेस, दस लगेज पीसेस हो गए, तो रात को आपको पता चलता है कि ऐसे जगह से ट्रेन गुजर रही है जहां डकैतियां होती है, जो चोर आकर के सामान चोरी करके चले जाते हैं, तो नींद आएगी, नींद आएगी। एक सूटकेस होता तो क्या करते, बर्थ के नीचे डाल दिया, अगर डर लगता है तो फिर चेन से लॉक लगा दी, निश्चिंत होकर के सो गए। तो भले वो रात को कोई भी पता है कि वो सुरक्षित है क्योंकि एक ही पीस है, राइट, लेकिन दस अगर होता तो नींद आएगी, नींद आएगी कि नहीं? रात भर को बीच बीच उठ करके गिनते रहेंगे कि मेरा सब कुछ है कि नहीं है, गिनते रहेंगे। जितने ज्यादा लगेज उतनी ज्यादा चिंता है ना, डर तो लगता है कभी कभी, कभी गुम ना हो जाए, ये ना हो जाए, संभालना पड़ता है ना, भले उठाना नहीं होगा लेकिन संभालना तो पड़ेगा ना, ये होता है। इस ट्रैवलिंग के लिए तो हम ध्यान रखते हैं, ट्रैवल लाइट कहते हैं, जितना लगेज लाइट होगा यात्रा आपका सुखद रहेगा, राइट। इसीलिए हम लगेज कम रख ले, जितना जरूरी है वही चीज हमने अपने बैग में डाला, जो जरूरी नहीं लगा, आवश्यक नहीं लगा, सब कुछ निकाल दिया। इस लगेज के लिए ध्यान रखा, लाइफ रूपी यात्रा भी तो है, लाइफ भी तो यात्रा है एक, है ना। तो इस यात्रा में, लाइफ रूपी यात्रा में आपका लगेज यहां कैसा है? सेफ है, ओवरलोडेड है या लाइट है? एक्स्ट्रा लगेजेस है वहां या फिर लाइट रखा है? यहां निशानी क्या है अगर यहां लाइट है तो? जितना लाइट उतने हम खुश रहते हैं, जितना भारीपन, शरीर को भी देखे, शरीर भी जितना भारी होता जाएगा चलना फिरना भी मुश्किल होगा, बहुत परेशान होते रहेंगे। जितना हल्के रहेंगे मन भी, कि जितना हल्का रहेगा तो फिर हम खुश रह सकते हैं, है ना। एक्स्ट्रा लगेज हम यहाँ डालते जा रहे डालते जा रहे बुद्धि में, तो वो यहाँ भारी होने के कारण से फिर हम कहेंगे, अगर पूछते हैं ना कि आपका लाइफ कैसा चल रहा है, जिंदगी कैसे कट रही है, हाँ ठीक है चल रही है, कट रही है, चेहरे पर मुस्कान ही नहीं है, खुशी नहीं है, इतना सुंदर जिंदगी है भगवान ने जो दिया है, तो उसको और सुंदर बना सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा लगेज ढो ढो करके इतना हम यहाँ परेशान हो गए हैं, तो फिर सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं, राइट। तो ये एक्स्ट्रा लगेज कौन सा है जो अनावश्यक डाला हुआ है यहाँ? हाँ, व्यर्थ बातें है ना, वेस्ट, जो अनावश्यक है, उन सभी बातों को हमें निकाल देने की जरूरत है, कोई आवश्यकता नहीं, सारी बातें निकाल दो, क्योंकि पास्ट की जो भी बात है उसके बारे में सोच के कुछ फायदा है? हो गई ना, बीत गई, 10 साल पहले इसने ऐसा कहा था, 20 साल पहले इसने ऐसा किया था, इतने ऐसा धोखा दिया था, इसने ऐसा झूठ बोला था, इसने ऐसा वो किया था, ये सारी बातें जो मेमोरी में लेकर के घूम रहे हैं ना, इसको डिलीट करो। कंप्यूटर मेरा स्लो हो रहा है ना, कंप्यूटर स्लो क्यों हो रहा है? वो ओवरलोडेड है, जितना हम जंक निकालते हैं ना तो उतना वो फ्री स्पेस मिलता है, तो वो जंक कैसे निकालेंगे? पास्ट की जो अनावश्यक बातें हैं उसको कैसे निकाले, कैसे निकाले? बिंदी लगाना है, चलो बिंदी लगा दिया, हो गया हो गया। कई बहनों ने तो बिंदी लगाई हुई है, राइट, तो बिंदी लग गई है आपको, बिंदी लग गई पास्ट को, फुल स्टॉप तो लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना माना उसको डिलीट करना होगा। डिलीट करने के लिए क्या करना होगा? भूलना पड़ेगा, डिलीट माना एरेस करना है, एरेस करना माना भूलना है, भूलने के लिए क्या करना होगा? क्षमा करना होगा, वेन यू फॉरगिव ओनली देन यू कैन फॉरगेट। भले हम इतना भूल नहीं पाते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है ना, नेगेटिविटी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा जितना हम फॉरगिव करते जाएंगे, क्षमा करते जाएंगे, कृपा करते जाएंगे, तो फिर वो मिटता जाएगा, उसका नेगेटिव का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं रहेगा। तो क्षमा करना, हाँ जी, वो याद नहीं जाता है ना, जो इसने ऐसा किया था, मेमोरी निरंतर लगातार, क्योंकि जितने ज्यादा इम्पैक्ट है ना उतने लंबे समय तक, जैसे कहते हैं ना क्रॉनिक डिसीजेस को हम लंबे समय तक ट्रीट करते हैं, अगर मेरे बचपन से कुछ बीमारी है, अभी डायग्नोज हुआ है, तो मुझे लंबे समय तक मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा, तब जाकर के क्योर होगा। मैं केवल 15 दिन में मेडिसिन ले लूं तो वो नहीं जाएगा, लंबे समय तक लेना पड़ता है। तो इसीलिए लंबे काल तक उसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्षमा करना। और क्षमा तो ऊपर से हम कह देंगे ठीक है क्षमा कर दिया, लेकिन अंदर से क्षमा करना किसको कहते हैं? अंदर से क्षमा करना माना शुभ भावना, शुभकामनाएं रखना, दुआएं देना। हम जिनको प्यार करते हैं ना, उनको दिल से दुआ देते हैं, आशीर्वाद करते हैं, ये फूले फले, आगे बढ़े, बहुत सुखी रहे, तरक्की हो उसकी लाइफ में, बहुत सारे दिल से उनको आशीर्वाद करते, दुआ करते, बहुत ये ब्लेसिंग्स देते हैं। तो क्या जिन्होंने मुझे दुख दिया है उनको मैं दुआ दे सकती हूँ? जिन्होंने दुख दिया है, जी भाई कर सकते हैं? हार्ड है, हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक माफ नहीं करेंगे ना। जैसे हम जब चल रहे होते हैं, अगर एक पैर कहीं अटका हुआ है ना, अटका हुआ भी नहीं है, एटलीस्ट मतलब 15 किलो कुछ बॉल जो आयरन बॉल है मुझे यहाँ बांध दिया गया है एक लेग पर, है ना, जब उसके साथ चलना होगा तो कितना मुश्किल है। क्विकली मैं चल से नहीं सकती, उसको घसीट घसीट करके मुझे जाना पड़ रहा है। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन ये जो बॉल है ना, आयरन बॉल, मुझे नीचे पीछे खींच रहा है। ये बातें ऐसे, मुझे आगे बढ़ना है, प्रॉस्परस होना है लाइफ में, खुश रहना है, तरक्की पानी है, लेकिन बार बार है ना ये याद आ जाता है, ये दिस इज लाइक अ हैवी बॉल जो मैं ले करके घसीट करके, तो इसलिए मुझे काटना पड़ेगा उसको, काटना पड़ेगा माना उसको फॉरगिव करना पड़ेगा, माना क्षमा करना पड़ेगा। तो क्षमा, दिल से क्षमा करना माना दुआएं देना, है ना। जब तक दुआएं नहीं देंगे ना, क्योंकि जो भी घटनाएं घटी है उस किस कारण से घटी है, चलो उसने मुझे दुख दे दिया, इतना माना हायर लेवल, बहुत ज्यादा दुख दे दिया है, इम्पैक्ट ज्यादा पड़ गया है, वो जो घटना घटी किस कारण से घटी है, किस कारण से घटी है? मेरे कारण से, अपने कारण से घटी है, किस कारण से? उसने ऐसा बोला, हम ब्लेम करते हैं ना, उसने ऐसा किया। जो भी घटनाएं घटती है ना अपने लाइफ में, बिना कारण नहीं घटते। जो भी घटनाएं घटी, मेरा कुछ ना कुछ हिसाब किताब है उस व्यक्ति के कारण, व्यक्ति के साथ, इसलिए वो घटना घटी है ना। तो वो जो हिसाब किताब मुझे चुप तो अगर करना है, फिर वो उसने तो नेगेटिव दे दिया, फिर मैं भी नेगेटिव दूं, गुस्सा करूं, घृणा करूं, द्वेष करूं, तो वो फिर नेगेटिव एनर्जी हम दोनों के बीच में ज्यादा बढ़ता जाएगा। उसको कहीं तो नलिफाई करना पड़ेगा ना। आग को आग से बुझा सकते हैं? आग को आग से बुझा सकते हैं? नहीं, पानी चाहिए उसको बुझाने के लिए। तो पानी क्या है? शुभ भावना, प्यार, स्नेह। भले उसने कुछ भी किया, लेकिन वर्तमान व्यक्ति को ना देखे, आत्मा को देखे। वो आत्मा है, ओरिजिनली वो प्रेम स्वरूप है, ओरिजिनली वो शांत स्वरूप है। एक बार ऐसे एक गेस्ट आए थे, एक महिला आई थी, तो फिर उनके साथ ऐसे चिट चैट करते, काउंसलिंग कर रहे थे, एक कोर्स करा रहे थे, तो ऐसी क्षमा की बातें ही हो रही थी। तो वो अभी अभी डिवोर्स होने के इसमें था, तो अप्लाई किया था 6 महीने, दो जो पीरियड होता है ना, वेटिंग पीरियड, उसमें थे। तो बहुत दोनों के बीच में बहुत नेगेटिविटी, उस महिला के मन में हस्बैंड के प्रति इतनी नफरत, ऐसा किया, वैसा किया, ये है, वो है, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, बहुत नफरत उसके अंदर। मैं तो क्षमा की बात कर रही हूँ अभी, तो मैं तो क्षमा नहीं कर सकती, उसने ना ऐसा किया था, वैसा किया था, ये किया था, क्षमा करना तो मुझे बहुत मुश्किल है, ये है, तो उसको दुआ दू वो तो पॉसिबल ही नहीं है उसको ब्लेस करो वो तो हो ही नहीं सकता, तो गुस्सा इतना तक भरा हुआ है उसको ना। तो मैंने कहा ठीक है, ब्लेसिंग को बाजू में रखो, दुआ को बाजू में रखो, तो क्या आप उसको आत्मिक दृष्टि से देख सकते हो? आपको मालूम है, आपको, आप इसमें बिलीव करते हो कि आप आत्मा है? तो बोला हाँ मैं आत्मा हूँ, उसमें विश्वास है। आपको इसमें विश्वास है? वो भी जो हस्बैंड है वो भी एक आत्मा है? हाँ वो भी विश्वास है, वो भी एक आत्मा है। तो चलो दुआ छोड़ो, अभी आत्मिक दृष्टि से देखो कि वो एक, वो भी एक आत्मा है, भले अभी कितना भी नेगेटिव है, लेकिन वो आत्मा ओरिजिनली, ओरिजिनल फॉर्म में वो शुद्ध है ना, ओरिजिनल फॉर्म में वो पवित्र है ना, ओरिजिनल फॉर्म में वो शक्तिशाली है ना। तो आत्मिक दृष्टि से देखते हुए बाबा को याद करो, परमात्मा को याद करते वो उसको देख, कुछ भी नहीं सोचो, दुआ नहीं दो, प्रेम नहीं दो, कुछ नहीं दो, केवल आत्मा समझ करके उस आत्मा को देखो। उसने बोला हाँ ये कर सकती हूँ मैं, तो कहीं तो शुरुआत करे, भले क्योंकि घृणा द्वेष इतना भरा पड़ा है, क्योंकि पास्ट के मेमोरीज इतना फ्रेश है, तो आत्मिक दृष्टि से देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे, आत्मा से तो नेगेटिव नहीं जाएगी ना, आत्मा ओरिजिनली प्योर है, प्योर आत्मा प्योरिटी ही, शुद्धता ही, शुद्ध स्नेह ही देती है ना। तो केवल वो फिर धीरे 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 उसके अंदर वो परिवर्तन आता गया है ना। तो आत्मा समझ करके आत्मा को देखते जाएंगे, कहीं ना कहीं वो हिसाब किताब चुप्त होना शुरू हो जाएगा, तो फिर पास्ट की जो बैगेज है वो हम निकाल सकते हैं, है ना। और दूसरे प्रकार के जो वेस्ट, जो लगेज है, एक्स्ट्रा लगेज है, भविष्य के चिंता, चिंता है भविष्य के आपके? हाँ जी है चिंता। क्या चिंता है? फॉर एग्जाम्पल आप बताइए क्या चिंता है आपको? हाँ और बेटर मिलनी चाहिए। ओके और किसको कौन सी चिंता है? हाँ और चिंता कौन सी है? शुड गेट सेटल्ड इन लाइफ। ओके एक हमें समझने की जरूरत है, कंसर्न अलग है और चिंता अलग है। चिंता और कंसर्न अलग, कंसर्न तो है भविष्य क्या होगा, वो तो कंसर्न रहना भी चाहिए और प्लान भी उस अकॉर्डिंगली तो करना ही पड़ेगा, राइट लेकिन कहीं ना कहीं जब हम चिंता करते हैं ना, कई बार पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो अनसर्टेन, क्योंकि वो सब डर या फिर चिंता क्यों है? क्योंकि भविष्य हमेशा अनसर्टेन है, सर्टेनिटी तो मिलेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कल क्या होगा। आपको पता है कल क्या होने वाला है? पता ही नहीं, नवरात्रि शुरू हो रहा है लेकिन मेरे जीवन में कल क्या होने वाला है, अपने जीवन में कल क्या होने वाला, कुछ पता नहीं, राइट तो अनसर्टेन है। जो प्लान किया हुआ होता है उसके अनुसार कभी कभी नहीं होता है, राइट अनसर्टेनिटी तो रहेगा, अनसर्टेनिटी के कारण से फिर डर है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये डर के कारण से फिर चिंता है। तो ये प्रोसेस है, राइट अनसर्टेनिटी को तो कुछ नहीं कर सकते हम, वो तो रहेगा ही, लेकिन व्हाट वी कैन चेंज इज द फियर, डर जो है उसको चेंज करेंगे तो चिंता बदल जाएगा। कि डर के कारण से भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, है ना, यही तो डर है। तो मान लीजिए कोरोना काल में तो डर क्या था, कहीं मुझे ना हो जाए, परिवार वालों को ना हो जाए, है ना, फैमिली मेंबर्स को ना हो जाए, मेरे को ना हो जाए। तो ये जो हम सोच रहे हैं ना, तो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। पॉजिटिव क्या है? नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है। पॉजिटिव क्या है फिर? हाँ, वो कॉशन तो कॉशियस तो रहना ही पड़ेगा, लेकिन फिर सोच क्या है? सोच क्या है? नहीं होगा। ओके, ओके, एक एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 30 सेकेंड्स में, अभी से जब शुरू करते हैं, तो अभी से नेक्स्ट 30 सेकेंड्स तक आपको बंदर को याद नहीं करना है। क्या याद आया? क्या याद आया? बंदर ही याद आया ना। बंदर को जब मैं बोला कि शब्द जो बोला, तो मन ना चित्रों में वो सोचता है। बंदर का चित्र आया या बंदर शब्द भी याद आया, तो बंदर के बारे में सोचना शुरू किया, राइट? तो जो सेंटेंस हम बोलते हैं ना, जिस सेंटेंस में जो नेगेटिव वर्ड्स है, नो, नहीं, ना, जो भी नेगेटिव वर्ड्स है, तो वो नेगेटिव सेंटेंस माना जाएगा। तो इसीलिए जो नहीं चाहिए उसके बारे में सोचेंगे ना, उसको हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी विश्वास करते हैं आपके मन में एनर्जी है, जो आप सोचते हैं तो वाइब्रेट करते हो आप, राइट? नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव वाइब्रेशंस छोड़ते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस छोड़ते हैं, राइट? तो बंदर को जब मैंने याद किया, वैसे तो इंस्ट्रक्शन था बंदर को याद नहीं करो, लेकिन बंदर याद आ गया, मैंने एनर्जी में बंदर को दे दिया, राइट? फिर मैं कहूं नहीं आओ, सो वो हो नहीं सकता, क्योंकि एनर्जी मैंने दे दी। सो अगर मैं ये सोचूं जो भी मुझे नहीं चाहिए लाइफ में ना, उसके बारे में सोच कर, मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं होना, ये कहीं आपने प्रैक्टिकल अनुभव किया होगा अपने लाइफ में, नए नए जब कार ड्राइविंग कर रहे थे, आप सीख रहे थे, तो पहली बार जब रोड पे उतारा आप अकेले, तो डर डर के तो उतारा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं टोक ना जाओ, कभी ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो डर डर, अभी टुका जरूर होगा कहीं ना कहीं, है ना? जितना हम डर डर के फिर ये सोचते ना, कहीं टोके नहीं, कभी ये ना हो जाए, ये वो ना हो जाए, मैं एनर्जी दे रही हूं उसको एक्सीडेंट को, तो एक्सीडेंट जरूर होगा, तो उसके बजाय क्या सोचना है? नहीं होगा, वही आ गए। एक्सीडेंट नहीं होगा सोचेंगे तो एक्सीडेंट को आप इनवाइट कर रहे हो, राइट? तो उसके जगह पे क्या सोचना है? सेफ्टी, सेफ, मैं सेफ हूं, मेरी गाड़ी सेफ है, सेफ्टी से मैं चला रही हूं। तो सेफ्टी के बारे में सोचते जाएंगे तो आप एनर्जी लेवल देखना, जब ये सोचते कि कहीं ठुक ना जाए, तो ये ना हो जाए, डर है मैं, तो और गलती कर लेते हैं, ना करते हुए भी कर लेते हैं ना, तो लेकिन उस थॉट चेंज जब करते हैं ना, मैं सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं, मैं अपनी गाड़ी सेफ है, तो पॉजिटिव एनर्जी जब हम क्रिएट करते हैं तो सारा कुछ बदल जाता है, है ना? तो भविष्य में हमें जो कुछ भी चाहिए तो उसके बारे में सोचना है, जो नहीं चाहिए उसके बारे में नहीं सोचना है, देन यू आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, है ना। तो अगर आपको प्रमोशन चाहिए, मुझे प्रमोशन मिल गया, है ना, मिलना चाहिए नहीं, जस्ट विजुअलाइजेशन दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट इट, तो फिर हम एनर्जी दे रहे हैं, सो आई एम अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी इन माय लाइफ, है ना। तो फिर धीरे 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 आप देखेंगे डर भी कम होता जाएगा, फिर चिंता भी कम होता जाएगा, है ना। तो इस रीति से भविष्य के, और दूसरा फैक्टर है कि विश्वास, खुद में विश्वास और परमात्मा में विश्वास जब हम रखते हैं ना, फिर हम कहेंगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा होगा। अच्छा अच्छा कहते सब कुछ अच्छा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये नेगेटिविटी निकाल करके, वेस्ट निकाल करके केवल वर्तमान में हम फोकस करेंगे तो हमारे लाइफ रूपी यात्रा बहुत सुखद रहेगा। और नेक्स्ट पावर है पावर टू टॉलरेट, है ना, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। इस चित्र में एक कारीगर मूर्ति बना रहा है ना, और पत्थर अगर थोड़ा सा कमजोर है, एक हथौड़ा मारा वो टूट गया, तो मूर्ति बन सकता है उससे? नहीं बन सकता। लाइफ भी हमें हथौड़ा मारता है, मारता कि नहीं मारता? बहुत मारता है। अगर हथौड़ा मारा फिर मैं वो बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मैं चिल्लाना शुरू करूं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, मुझे इतना करना पड़ा, ये वो, चिल्लाना, इसको चिल्लाना कहते हैं, राइट। चिल्लाना, चिल्ला रहे हो, उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं। कोई कोई तो ऐसे होते हैं ना, थोड़ा भी वेदर ऊपर नीचे होता है ना, सहन नहीं कर पा, अरे बहुत गर्मी गर्मी, बहुत गर्मी गर्मी, बहुत गर्मी, गर्मी तो है, उसके लिए एसी चलाओ, पंखा चलाओ, जो भी चलाओ, फिर बोलते रहेंगे गर्मी गर्मी, बहुत गर्मी जा रही, तो फिर उससे कुछ फायदा होगा? नहीं है, है ना। थोड़ा भी सहन नहीं कर पाते, तो मैंने सहन जब नहीं करते तो फिर लाइफ भी क्या करता, ये तो कमजोर है, छोड़ो, मूर्ति नहीं बन सकता है, तो है ना। और बड़ी चीजें लाइफ में मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहीं फेल हो रही हूं मैं, लाइफ भी एक पाठशाला है ना। अगर एक एग्जाम पास किया तो नेक्स्ट एग्जाम मिलेगा, नेक्स्ट एग्जाम पास किया तो नेक्स्ट होगा, तो टफर एग्जाम्स आते जाएंगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं हायरार्की में ऊपर चढ़ती जाऊंगी, तो टफर एग्जाम्स तो आएंगे लाइफ में। लेकिन इस एग्जाम से मैं थक गई, परेशान हो गई, तो लाइफ कहता है इसके कैपेसिटी इतना ही है, छोड़ो, इतना ही है, ठीक है, आगे नहीं मिलेगा इसको, है ना। तो सहन करने की शक्ति, मूर्ति बनना है, आगे बढ़ना है, बहुत कुछ हासिल करना है लाइफ में, तो सहन शक्ति को अपनाना पड़ेगा। जो भी बड़े हैं संसार में, उन्होंने कम सहन किया है। बड़े बनना कहते हैं ना, बड़े बनना बड़ा दुख पाना कहते हैं वो, जैसे, लेकिन उनको नेचुरल है उनका सहन शक्ति, इसके कारण से वो वहां बैठे हुए हैं। उनको ऐसा नहीं लग रहा हो रे बाप रे मुझे इतना सहन करना पड़ रहा है, उनको ऐसा नहीं लग रहा है, बहुत इजी हो जाता है। हम लोगों ने भी, हम सभी ने सहन किया है, ऐसा नहीं कि नहीं, वी आर वेरी कंडीशनड, ये मैं सहन कर सकती हूँ, ये सहन नहीं कर सकती हूँ। अपनों का सहन करना इजी है, परायों का सहन करना मुश्किल है। कई बार परायों का सहन करना इजी है, अपनों का सहन करना मुश्किल होता है। तो पराया लोग आकर के कोई कमेंट करके चले गए, अपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट पर कोई और नेगेटिव कमेंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है उसने किया, थोड़ा बहुत लगेगा कि ऐसे क्या किया इसने, नेगेटिव को कमेंट कर लिया ही कर लिया, लेकिन अपने लोग को ऐसा कर दिया ना, तो फिर थोड़ा सा ठेस ज्यादा पहुंचता है, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात यह है और उल्टा भी होता है, जहां अपनापन है खुद को सहन करना इजी हो जाता है। जैसे अपना बच्चा है, वो अपना बच्चा बीमार है, बीमार रहता है तो उसको हम रात भर भी जाग करके उसकी देखभाल करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे, डॉक्टर्स को ये करेंगे, सब कुछ करेंगे, भले खुद को कितना भी खर्च करना पड़ रहा है, कितना भी रातें नींद क्या करना पड़ रहा है, परेशानियां उठानी पड़ रही है, फिर भी हम ये नहीं कहेंगे कौन सी मुसीबत आ गई। कभी कहेंगे? नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरा बच्चा है ना, मेरा है ना, तो इसलिए कभी नहीं कहेंगे। लेकिन वही आपके अगर कोई रिलेटिव ना आपके घर में उनके बच्चे को छोड़ा है पढ़ाई करने के लिए, तो अगर वो बार बार बीमार पड़ रहा है, आपको फिर उसको देखभाल करना पड़ रहा है, तो क्या कौन सी मुसीबत है ना, क्योंकि वो पराया है, ये मेरा है ना। तो जहां प्यार है, अपनापन है, वहां सहन इजीली हो जाता है, जहां परायापन है वहां सहन नहीं होता है। तो इसलिए सहन शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, प्यार की शक्ति, स्नेह की शक्ति, अपनेपन जितना बढ़ता जाएगा तो सहन करना इजी हो जाएगा, है ना। तब जाकर के वो सहन नहीं लगता। सहनशीलता में भी दो शब्द है ना, सहन और शीतलता, है ना। बाहर से भी हम चुप और अंदर से भी शीतल, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर होता है तो फिर वो ऊपर का वाल्व अगर बंद होता है तो वो खुल नहीं रहा है, प्रेशर भरने के बाद भी तो वो सीटी नहीं बज रहा है, तो क्या होगा, बर्स्ट हो जाता है प्रेशर कुकर। ऐसे बहुत कुछ प्रेशर भर भर के अगर मैं रिलीज नहीं कर रही हूं, वो ठंडा नहीं हो रहा है, तो कहां से निकलता है वो प्रेशर, बोल से निकलना शुरू हो जाएगा। भले आप एक दिन सहन किया, दो दिन सहन किया, दस दिन सहन किया, फिर ग्यारहवें दिन, मेरा कैपेसिटी 10 दिन का है, फिर क्या होगा ग्यारहवें दिन, थोड़ा कुछ ऐसे बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन कोई बच्चा आकर के कुछ गिरा दिया, पानी का ग्लास गिरा दिया, कुछ गिरा दिया, तो वो सारा जो 10 दिन का जो प्रेशर यहाँ भरा हुआ है ना, भप करके वो बाहर आएगा, 2-4 थप्पड़ बच्चे के, वो जो थप्पड़ गया ना बच्चे के ऊपर, वो पानी गिराने के लिए नहीं था, वो जो प्रेशर था 10 दिन का, वो प्रेशर वो बच्चे के ऊपर आ गया, है ना। तो इसीलिए वो प्रेशर बने ही नहीं अंदर, है ना, प्रेशर बने ही नहीं अंदर, अगर वहां प्रेशर बने ही नहीं तो बाहर फूटेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, हम बाहर से वो गुस्सा भी नहीं करेंगे। तो इसलिए शीतलता हम ला सकते हैं प्यार से, प्यार की शक्ति से, अपनापन की शक्ति से। तो इसलिए कहते हैं महान आत्माएं ही सहन कर सकती है, और सहन करने से आत्मा की शक्ति बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। और सागर की विशेषता क्या है, समाना, है ना, जो भी गंदगी जाता है पानी के साथ साथ वो क्या करता है, ले लेता है, पहले सब कुछ ले लेता है, फिर बाद में गंदगी को बाहर फेंक देता है ना। तो ऐसे ही संसार रूपी सागर में रहते हुए अलग अलग लोगों के साथ मेरा संबंध संपर्क हो रहा है, उनकी जो एनर्जी है मेरे अंदर आ रहा है और मेरी एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, राइट। तो इसमें सब कुछ हमें ले लेना है, लेकिन फिर नेगेटिविटी को हम मुझे यहां से निकाल देना है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, मुश्किल है। नए नए जब किसी से मिलते हैं ना, नए नए फ्रेंडशिप बन रहा है, नए नए संबंध बना हुआ है, तो केवल उनके पॉजिटिविटी पर ध्यान जाता है, ये इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा बोलते हैं, कितने अच्छे है, ये स्वीट है, ये है वो है, तो पॉजिटिविटी पर ध्यान जाता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति के साथ जीने लगते हैं तो क्या होगा, नए नए जब शादी हुआ होता है तो सब कुछ सुहावना है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मेरी बहू तो लक्ष्मी समान है, मेरी ये तो ये समान है, बहुत अच्छी है, ये है वो है, विद इन सिक्स मंथ्स क्या हुआ, छह महीने के अंदर क्या हो गया, फिर उल्टा ही हो जाता है, ये तो उल्टा ही नहीं, ये वो नेगेटिव, सारा कुछ ऐसा हो जाता, जो लक्ष्मी है वो बदल के कुछ और ही हो गया अभी। ये हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, एडजस्टमेंट डिफिकल्ट हो गया यहाँ, क्यों, अच्छा चलो, कितने लोग मैरिड है यहाँ, सभी मैरिड है ना, ओके, आपके पास नोटबुक पेन है तो निकालिए नोटबुक पेन, आप अपने पार्टनर है ना, हस्बैंड हो तो अगर वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड के, आपके पार्टनर के पांच गुण लिखिए, अच्छे गुण, क्वालिटीज, केवल पांच, दस पंद्रह भी नहीं, पांच, क्योंकि इतने साल उनके साथ जिया है, सब कुछ पता है उनके बारे में, तो पांच क्वालिटीज लिखिए, मुश्किल है। बाप रे, ये तो पांच क्वालिटीज लिखिए, लिख लीजिए, फिर लिखिए, प्रैक्टिकली लिखिए, सोच के कि हाँ ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, अच्छे क्वालिटीज, गुण जिनको कहते हैं, जिसको आप बहुत अप्रिशिएट करते हैं, हो गया, किसका हो गया, हाथ उठाइए, और बाकी तो सोच ही रहे हैं अभी क्या। तीन चार लोग जो लिखा है बस, हो गया, अच्छा चलो, और जितना भी हो गया हो गया, राइट, अभी फुल, इसको फुल स्टॉप, नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी अभी पांच अवगुण लिखिए, पांच अवगुण, दस, दस लिख सकते आप, लिखिए, दस लिख सकते हैं आप, लिखिए। आपके पार्टनर कौन है, यहाँ आए नहीं है, आए तो देखो आपके, वो कहते कि दस है। लिखिए अवगुण, लिखिए पांच, दस नहीं है, पांच लिखिए बस, अवगुण, अवगुण नहीं कह सकते, थोड़ा वीकनेसेस या कुछ ऐसे कमजोरी या कुछ थोड़ा सा है ना, जिससे आप परेशान हैं। हर एक के अंदर पॉजिटिविटी भी है, हर एक के अंदर नेगेटिविटी है, राइट, तो कौन सा सहजता, गुण लिखना सहजता, अवगुण लिखना सहजता, अवगुण लिखना सहजता, गुण लिखना सहजता, अच्छे गुण लिखना सहजता, बाप रे, बहुत अच्छा, अच्छी बात है फिर। जिनको गुण लिखना अच्छा इजी था वो हाथ उठाइए।
आप तो वो कह रहे हो कि उल्टा कह रहे हैं आप।
वो रहना है तेरे अवगुण लिखना है इजी था वो, लेकिन हाथ उठाइए। एक अभी सबके पार्टनर्स यहाँ है तो इसीलिए वो नहीं बता रहे, लेकिन ना फट से मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ी होगी तो फट से जो इमीडिएटली आया होगा वो कौन सा इजी था? अवगुण। क्यों क्यों? क्योंकि रोज रोज मैं एनर्जी उस चीज को दे रही हूं, रोज रोज उसी पर मेरा ध्यान जा रहा है, रोज रोज वही मैं सोच रही हूं। कितना परेशान करके रखा, ये है वो है सारा, तो वो उसी के बारे में सोच सोच करके वो इमर्ज रूप में है। तो अवगुण बोलते फटफट फटफट वो याद आए, ये करते ये करते ये करते। गुणों के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, हर एक के अंदर गुण है, हर एक के अंदर थोड़ा बहुत अवगुण भी है, लेकिन हम एनर्जी ज्यादा नेगेटिविटी को देने के कारण से उसको फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके कारण से हम एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसके कारण से हम समा नहीं पा रहे। जब खुद के अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों है, कोई इस सभा में कोई ऐसा है कहे कि मैं परफेक्ट हूं, मेरे अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, कोई है? हा? कोई है कहने वाला? हा? कोई वीकनेसेस नहीं है मेरे अंदर, कोई नहीं है, राइट? हाँ, परसेंटेज में वेरिएशन है, ऐसा 100% गुणवान में हूं कोई कहने वाला? कोई नहीं है, परसेंटेज है, हर एक का परसेंटेज है। कोई 80-20% है, कोई 75-25% है, कोई 10-90% है, तो हर एक का वेरिएशन है। जब मैं खुद 100% नहीं हूं, मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं सामने वाला मेरा ऐसे होना चाहिए? तो मैं हम जब सोचते हैं कि मुझे ना सीता जैसे वाइफ चाहिए, तो खुद राम है क्या, राइट? तो वो हरे को अच्छा चाहिए, लेकिन मैं खुद हूं ऐसे, तो मेरे अंदर कितने भी त्रुटियां हो लेकिन सामने वाले के अंदर नहीं होना चाहिए। When I accept this thing, then I'm able to accept the weaknesses of others as well. मैं खुद परफेक्ट नहीं हूं, तो फिर वो जो व्यक्ति जो है जैसे है वो मेरे है, कोई भी संबंध वाले, चाहे माँ बाप है, बच्चे हैं, वाइफ है, फ्रेंड्स है, जो भी है, कुछ रिलेशनशिप्स को हम बदल सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप्स को हम बदल नहीं सकते। फ्रेंड्स को चेंज कर सकते हैं आप, ये फ्रेंड अच्छा नहीं लगा छोड़ो, उसको छोड़ करके फ्रेंडशिप और दूसरों के साथ फ्रेंडशिप करना शुरू किया, लेकिन पेरेंट्स को चेंज नहीं कर सकते आप, बच्चों को चेंज नहीं कर सकते, पार्टनर को भी आजकल तो तो चेंज कर देते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे, हाँ हिंदू यहाँ भारतीय संस्कृति में इतना जल्दी हम चेंज नहीं करते वो बात, उसको भी है ना, तो बुरा माना जाता है। तो जितना हो सके हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, जितना हो सके हम सबके साथ मिलजुल करके रहने की कोशिश करेंगे, जब तक यहाँ तक ना हो जाए, राइट? तो इसलिए क्यों नहीं हम खुशी खुशी से एडजस्ट होकर के चले, परेशान क्यों? खुशी को खुशी से एडजस्ट होना माना केवल उनके पॉजिटिविटी पर ध्यान दे, है ना। एक विदेशी कपल था, उन्होंने 25 इयर्स एनिवर्सरी, सिल्वर जुबली की मैरिज एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो लोगों को बहुत आश्चर्य लगा। तो आजकल के जमाने में बहुत जल्दी जल्दी पार्टनर्स चेंज करते हैं, तो ऐसे जमाने में तो सिल्वर जुबली मना रहे हैं मैरिज एनिवर्सरी के, तो क्यूरियोसिटी था। तो वो हस्बैंड को पूछा लोगों ने कि क्या आपका सीक्रेट क्या है हैप्पी मैरिज लाइफ का, तो एक ही पार्टनर के साथ आप 25 इयर्स बिताए हैं, क्या है? तो उसने बहुत सुंदर एक बात कही, ऐसा नहीं कि हमारा डिफरेंसेस नहीं होता था, ऐसा नहीं कि छोटे छोटे फाइट्स नहीं होते थे हमारे बीच में, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस नहीं होते थे, ऐसा सब कुछ होता था। लेकिन मैं हर रोज रात को डिनर होने के बाद, मैं घर के बाहर एक लॉन है, लॉन पर एक बेंच है, तो वहां रोज रात को डिनर के बाद मैं वहां बैठता था और मैं गिटार लेकर के बहुत सुंदर भगवान को मैं धन्यवाद करता था। मैं जहां बैठता था ना, घर दिखाई देता था और वहां लाइट जब जल रहा है तो फिर पता चलता मेरे वाइफ क्या कर रही है, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो फिर सब कुछ देखते हुए मैं भगवान को धन्यवाद करता था। हे भगवान, धन्यवाद कितने अच्छे वाइफ देने के लिए, इतना अच्छा घर देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, सिर पर छत देने के लिए, छोटी छोटी चीज जो मेरे जीवन में था तो उसके लिए, सबके लिए मैं धन्यवाद करता रहा। तो इसीलिए भले कितने भी डिफरेंसेस, कितने भी ये, तो वो फिर धन्यवाद, वो जो एनर्जी है शुक्रिया का, तो वो फिर के उस कारण से, पॉजिटिव एनर्जी के कारण से मैं फिर ये शादी चलता रहा, है ना। कई बार हम अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, है ना। वो जब व्यक्ति दूर हो जाते हैं फिर हम कहते हैं अरे इतने अच्छे थे वो, है ना। वी लॉस दैट पर्सन, उन्हें जाने के बाद गुणगान करते, उनकी महिमा करते, लेकिन रहते हुए महिमा करो ना, तो कितना संबंध ठीक हो जाता है ना। व्हेन वी स्टार्ट टू अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों को जब अप्रिशिएट करना शुरू करते, समा के चलना, एडजस्ट होकर के चलना बहुत ईजी हो जाता है। समटाइम्स वी टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड, ठीक है ना, है तो सही। बच्चे कहते हैं कि माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हमारे देखभाल करने के लिए, दे टेक इट फॉर ग्रांटेड, है ना। अप्रिशिएट करे कि हाँ मुझे भगवान ने माँ बाप दिए हैं, वो ऑफन्स को देखो, जो अनाथ को देखो, जो इनको माँ बाप नहीं है, जो है उसका कदर नहीं है, है ना। छोटी छोटी बातों को जब हम अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, सो देन वी स्टार्ट टू एंजॉय लाइफ, है ना। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, या फिर परखने की शक्ति, है ना। हम दो चीजों को परखते हैं, एक है परिस्थिति और दूसरा है पर व्यक्ति। भले हम कितना भी एडजस्ट होके चले, सहन करके चले, प्यार से चले, जब भी हम नया रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू करते हैं ना, कनेक्ट करना शुरू करते हैं, उसको अच्छी रीति परखने की कोशिश करते हैं, है ना, कि इसका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। बिजनेस पार्टनर्स भी जब बनना होता है उसके बैकग्राउंड चेक करते हैं, जब सब कुछ समझ करके फिर हम पार्टनरशिप करने की कोशिश करते हैं। परखना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति से मैंने एक बार धोखा खाया तो किसकी गलती, मेरी गलती नहीं है, मैंने उस पर ट्रस्ट रखा था, विश्वास किया था उसके ऊपर, तो इसलिए मैं ठीक है, माय बैड, मेरी गलती थी, तो ठीक है कोई बात नहीं। और दूसरी बार उसी व्यक्ति से मैंने धोखा खाया तो क्या होगा, इट्स अ बिग ब्लंडर, है ना। और तीसरे बार भी उसी व्यक्ति से मैंने धोखा खाया तो फिर क्या कहा जाएगा मुझे, मूर्ख, मूर्ख। बार बार उसी व्यक्ति से मैं धोखा खा रही हूं तो पहले वाले घटनाओं से मैंने लेसन नहीं सीखा, उसको समझा नहीं, फिर से वही मैं गलती कर रही हूं, तो मेरा जीवन तो फिर बर्बाद हो जाएगा, राइट। इसीलिए परखना बहुत जरूरी है, व्यक्ति व्यक्ति को और परिस्थिति को। परिस्थिति में भी, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है उसको भी समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो यहां क्या देख रहे, डायमंड, डायमंड को देखने के लिए एक लेंस है, उस लेंस के द्वारा जब हम देखते हैं तो डायमंड में कितने दाग है, कितने ये प्योरिटी है उसके अंदर पता चलता है तब। और गोल्ड को भी जब हम परखते हैं तो वो कसौटी है, उस पर घिस करके पता चलता है कि वो कितने कैरेट का गोल्ड है, राइट। तो यहां परखने के लिए, लाइफ में लोगों को परखने के लिए क्या है, क्या चाहिए, परिस्थिति, व्यवहार, व्यवहार को देखकर क्या पता ही नहीं कर सकते हो कितने मीठे होते हैं, कितने एटिकेट्स होते हैं, लेकिन अंदर से उनके इंटेंशन, इंटेंशन से एग्जाम खराब हो जाता है, डबल स्टैंडर्ड होता है ना। बिहेवियर से आप परख नहीं सकते, आउटर अपीयरेंस से परख नहीं सकते। खुद के, चलो दूसरों के छोड़ो, खुद के अंदर क्या होना चाहिए जिससे मैं परख सकती हूँ। खुद के अंदर कुछ तो इक्विपमेंट होना चाहिए, कुछ तो कला होना चाहिए, कुछ तो कुछ होना चाहिए जिस देख करके मैं परख सकती हूँ। एक्सपीरियंस, ऑनेस्टी, ओके, और क्या होना चाहिए खुद के अंदर? सहन शक्ति। नहीं, हर एक चीज में पसंद नहीं कर पाते। एक हम ये समझना जरूरी है कि ये हमारे बैटल फील्ड है, राइट। हर परिस्थिति में एक ही शस्त्र का प्रयोग नहीं कर सकते आप। कभी सहन करने की शक्ति तो कभी सामना करने की शक्ति। तो परखने के लिए अंदर विजडम चाहिए, प्रज्ञा। जब इतना डीप अंडरस्टैंडिंग है तब जाकर के मैं व्यक्ति को परख सकती हूँ। उसके लिए मेरी जो बुद्धि है ना, बहुत क्लियर चाहिए, बहुत क्लियर। जितना बुद्धि क्लियर है उतना मैं अच्छी तरह व्यक्ति को या परिस्थिति को परख सकती हूँ। तो इसलिए कहते हैं मेडिटेशन के द्वारा जो चंचल मन है उसको क्लीन करना है, वो शांत करना है, भटकती हुई बुद्धि को स्थिर करना है ना। तब जाकर के संस्कार परिवर्तन होंगे। तो जैसे ना कांटे होते हैं, जब वो तराजू, पुराने जमाने में तराजू यूज करते थे, वो कांटा होता था। जो बुद्धि का जो तराजू है ना, ये स्थिर होना चाहिए। जितना स्थिरता है उतना हम समझ सकते हैं, नहीं तो फिर कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति प्रेजेंट ही नहीं है और वो कुछ और ही कर रहा है, तो क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, बुद्धि स्थिर है ही नहीं, मन में कुछ और चल रहा है। तो इसलिए मन शांत और बुद्धि जब क्लियर होगा ना, तब हम व्यक्ति को परख सकते। वो देख करके, अगर किसी व्यक्ति को देख करके मैं अंदर ही मन में कुछ और सोच रही हूँ या मेमोरीज के साथ कनेक्ट कर रही हूँ, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, अंदर ही कुछ चल रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन क्लियरली, है ना। पानी में भी जब क्लियर क्लैरिटी है तब दिखाई देता है। तो यहाँ स्थिरता चाहिए। जितना स्थिर है, मन क्लीन है और बुद्धि क्लियर, मन क्लीन है और बुद्धि क्लियर है, तो फिर मैं परख सकती हूँ। उसके लिए कहते हैं प्रज्ञा। तीन लेवल में है, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। इंफॉर्मेशन वो बात है जो हम लोगों को सूचना मिलती है। अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिला, एक लाइन का इंफॉर्मेशन मिला कि मुझे ने आपको गुस्सा नहीं करना है, तो एक लाइन का इंफॉर्मेशन है, तो वो नॉलेज में कैसे परिवर्तन होगा? एक लाइन के इंफॉर्मेशन में प्रॉब्लम क्या है? आपको गुस्सा नहीं करना है, इसमें कुछ ताकत है? ताकत नहीं है, हाँ। किसी बड़े बुजुर्ग ने आपको कह दिया कि गुस्सा नहीं करना है, तो आप उसको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? जब तक वो व्यक्ति आपके सामने है तब तक नहीं करेंगे। तो वो जब व्यक्ति चला जाएगा तो ऐसे परिस्थितियां आ जाएंगे तो गुस्सा जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है, गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, करने से हानि क्या होगा, न करने से लाभ क्या होगा, और गुस्सा कंट्रोल करने की विधियां क्या है, ये सब कुछ समझ न होने के कारण से वो इंफॉर्मेशन में ताकत नहीं है। इंफॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू नॉलेज। इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह समझा, क्यों नहीं करना चाहिए, करने से क्या होगा, करने के तरीके क्या है, सब कुछ समझने से वो ताकत बनता है, वो ज्ञान है। ज्ञान तलवार है, ज्ञान रोशनी है, क्लैरिटी मिलती है ज्ञान में, है ना। और ज्ञान को विजडम में कैसे परिवर्तन करेंगे, प्रज्ञा में कैसे परिवर्तन करेंगे। समझ तो है पूरी तरह, थ्योरेटिकल नॉलेज है मेरे पास, गुस्सा क्यों, लंबा मैं एक घंटा लेक्चर दे सकती हूँ, गुस्सा क्यों नहीं करना चाहिए, गुस्सा ना करने से लाभ क्या होगा, लंबा चौड़ा मैं कर सकती हूँ क्लास, थियोरिटिकल ज्ञान में दे सकती हूँ। लेकिन वो ज्ञान इम्प्लीमेंट जब होगा, मैं अपने जीवन में धारण करके एक्सपेरिमेंट करना शुरू करूं कि यह परिस्थिति आई, मैं अपने को कंट्रोल किया, शांत रही, तो व्हाट एड्स टू इट इज एक्सपीरियंस, अनुभव। जो अनुभव ऐड होता गया, ज्ञान प्लस अनुभव, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस इज इक्वल टू विजडम, प्रज्ञा, है ना। जितना मैं अनुभव करती जाऊंगी तो मेरे अंदर वो समझ गहरा होता जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहते हैं जितना आप लाइफ को गहराई से देखना शुरू करते हैं तो फिर आपके अंदर लाइफ के बारे में समझ बढ़ती जाएगी। ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हाँ, कमाना है, खाना है, लाइफ करना है, तो ऊपर ऊपर से जी रहे हैं, तो लाइफ को आपने समझा ही नहीं, उसके वो बुद्धि डेवलप ही नहीं होगा, है ना। जितना हमारे अंदर वो समझ गहराई, तो स्पिरिचुअलिटी जितना आप अनुभव करते जाएंगे तो फिर वो प्रज्ञा बढ़ता जाएगा। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू डिसाइड, या निर्णय करने की शक्ति, है ना। तो इसमें क्या देख रहे हैं, न्याय की देवी देख रहे हैं। न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू है और एक हाथ में तलवार है और आंखों पर पट्टी है। तराजू किसका प्रतीक है, बैलेंस है, इंग्लिश में कहते हैं उसको बैलेंस, समानता, निष्पक्षता, है ना, अनबायस्ड डिसीशंस, है ना, दोनों तरफ का सोच समझ करके, सुन करके, दोनों तरफ का देख करके फिर निर्णय लेना, निष्पक्ष निर्णय लेना, वो तराजू का प्रतीक है। और तलवार स्ट्रेंथ का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि क्या मैं डिटैच कर पाए, अगर कोई कुछ दुख दे रहा है क्या उसको काट करके अलग कर सकते हैं, बड़े मेरा ही अंग है। जैसे अगर मुझे गैंग्रेन हो गया, डायबिटिक हूं, गैंग्रेन हो गया पांव में, अगर मैं उसको काट के फेंकूंगी नहीं, पैर नहीं काटूंगी, तो क्या होगा, तो वो जो पॉइजन है पूरा बॉडी सड़ जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए मुझे अपने पैर को काटना जरूरी है, नहीं काटेंगे तो फिर, है ना। तो जब ऐसे डिसीशंस आते हैं तो क्या मैं काट सकती हूँ लाइफ, केवल शरीर की बात नहीं है, जो अपने हैं, जो वो गलत करते हैं, तो क्या मैं ऐसे पावरफुल डिसीशन ले सकती हूँ, वो ताकत है राइट डिसीशन लेने का। नहीं तो मोह, अपने पन के मोह में आकर के गलत डिसीशन लेने से खुद को भी नुकसान और दूसरों को भी नुकसान, महाभारत इसके कारण से हुआ, राइट। और फिर आंखों पर पट्टी माना, अंधविश्वास, आंखों पर पट्टी मना अंधा विश्वास करना है क्या, नहीं। कोई कहते हैं कानून अंधा है, इम्पार्शियल, वो भी तराजू भी इम्पार्शियल डिसीशंस है। आंखों पर पट्टी का मतलब ये है जो इन आंखों से देख रहे हैं ना, उस पर 100% विश्वास करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है। जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है, राइट। तो बहुत सारे ऐसे कहानियां हमने बचपन से सुनी है ना, जैसे एक फॉरेस्ट में एक फैमिली रहा करता था, हस्बैंड वाइफ और एक छोटा बच्चा, और हस्बैंड हर रोज वो लकड़ी तोड़ दे काटने जाता था और बाजार में बेच के फिर शाम को लौटता था। घर में तो एक ही महिला है, वाइफ और एक छोटा सा बच्चा है। और एक दिन वो महिला पानी भरने के लिए वो कुएं से पानी भर के अंदर आ रही थी। उनके घर में नेवला था, नेवला पाल के रखा था। तो जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची तो क्या देखा, नेवला के मुंह पर खून के धब्बे थे। वो कूद कूद करके बालकिन को कुछ दिखा रहा है और उसको गुस्सा आया, मेरे बच्चे को इसने मार दिया करके वो घड़े को वो नेवले पर डाल करके वो अंदर जाके देखा। फिर क्या देखा, सांप मरा था। उस महिला ने क्या देखा, खून के धब्बे देख करके क्या सोचा, इसने मेरे बच्चे को मार दिया। लेकिन हुआ क्या था, उल्टा ही हुआ था, है ना। इमेजिनेशन, मोह के कारण से गलत इमेजिन कर लिया, तो फिर कर्म भी कर लिया, डिसाइड भी कर लिया, फिर कर्म भी करके फिर अंदर जाकर के देखा, बहुत अफसोस हुआ उसको, है ना। कई बार अपने जीवन में भी ऐसा होता है, कुछ देख लेते हैं, अपने ही कुछ विचार इमेजिनेशन से कर लेते हैं, इसके कारण से ऐसा हुआ होगा, इसके कारण से इसने ऐसा बोला होगा, इमेजिन कर लिया, डिसाइड भी कर लिया ऐसा ही होगा करके डिसाइड करके कर्म भी कर लिया। कर्म कर लेने के बाद दो चार दिन के बाद पता चलता है, अरे ये तो गलत है, राइट। तो ये है आंखों पर पट्टी। तो इसलिए जो देखते हैं थोड़ा सा, अगर वो महिला थोड़ा सा धीरज धरती, अगर वो अंदर जाकर के देखते हुआ क्या है, प्रैक्टिकली सच्चाई क्या है, वो देख लेती तो फिर उसको अफसोस नहीं होता, है ना। तो और दूसरी बात, आंखों पर पट्टी माना, अपने अंतर मन की आवाज को सुनने की आदत डालो, क्योंकि अंतर मन की आवाज कभी भी नेगेटिव नहीं बोला, मन कभी भी झूठ नहीं बोलता। कभी भी एक बच्चा नया नया चोरी करने जाता है तो अंतर मन बोलता है ना कि नहीं, चोरी करना पाप है, गलत सिगरेट ये करने सेवन करने जाता है तो बोलता है, नहीं गलत है, नहीं करना चाहिए। वहां द्वंद्व चलता है, जब भी गलत काम करने जाते हैं या द्वंद्व चलता है, लेकिन उसको ओवर पावर करके मैंने वो गलत काम कर लिया तो फिर धीरे 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 आई एम किलिंग माई ओन कॉन्साइंस। इसीलिए कहते हैं जीवन में बहुत बड़ा पाप माना अपने ही विवेक का खून करना, बहुत बड़ा पाप कहते हैं। मना इसको अंतर मन की आवाज को चुप करा दिया, चुप रहो तुम, बोलो ही नहीं, मुझे गलत काम करना है, तो चुप, वो बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा बड़ी गलती है, है ना। जितना हम सुनते जाएंगे अंतर मन की आवाज को और उस अनुसार कर्म करना मुश्किल है। कहते हैं कि झूठ नहीं बोलो, लेकिन वहां झूठ बोलना इजी है मुझे, राइट। वो प्रलोभन होता है कि झूठ बोल के निकल जाओ ना, सच बोलेंगे तो और फंसेंगे, है ना। तो लेकिन फिर वो मुश्किल है, लेकिन फिर वो संस्कार बन जाता है, राइट। तो इसलिए जो भी मुश्किल है, राइट बात है, वो मुश्किल जरूर है, लेकिन एक बार कर लिया फिर इजी होना शुरू हो जाता है। इसलिए अंतर मन की आवाज को सुनते हुए उसको फॉलो करने की जरूरत है, तब हमारे निर्णय राइट होना शुरू होता है। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू फेस, या सामना करने की शक्ति। सहन करना भी एक शक्ति है, उसका अपोजिट, जस्ट अपोजिट है सामना करने की शक्ति। तो ये चित्र में क्या देख रहे हैं, एक लड़का सर्फिंग कर रहा है और एंजॉय कर रहा है, और इतना बड़ा वेव है ना, वो वेव को देखकर ही डर लगता है, लेकिन वो एंजॉय कर रहा है, राइट। जीवन में भी, और हमारे सामने बहुत ऐसे बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़ी लहरें उठती है, लेकिन उस बच्चे के अंदर दो बातें हैं, क्यों वो एंजॉय कर पा रहा है, दो बातें हैं, एक है हिम्मत और दूसरा है उसको सर्फिंग करने की स्किल है, वो सीखा हुआ है, है ना, अपने जीवन में भी हिम्मत की जरूरत है। बड़े बड़े तूफान आएंगे, बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन अगर हिम्मत है तो उसको हम पार कर सकते हैं। और हिम्मत के लिए बहुत जरूरी है खुद में विश्वास और परमात्मा में विश्वास रख करके जब हम चलते हैं तो जरूर हिम्मत बढ़ता जाएगा। और स्किल, युक्ति युक्त होके चलना है हर चीज। जरूरी नहीं कि हर एक चीज हम लड़के करके ही सामना करना है, नहीं, युक्ति से प्यार से हम चलेंगे तो बहुत जल्दी। इलाबोरेशन बहुत है इसका, लेकिन फिर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि टाइम होता जा रहा है। तो ये दो बातें अपने जीवन में अगर होता है तो हम जरूर हर परिस्थिति को सामना कर सकते हैं। और लास्ट शक्ति है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति, है ना। हर एक को मदद की जरूरत होती है ना। अकेले तो नहीं जी सकते, हर मतलब कोई ना कोई मोड़ पे हमें मदद की जरूरत होती है। तो मदद कैसे मिलेगा, मदद कैसे मिलेगा, मांगने से मिलेगा मदद? हाँ, मदद मांगने से एक दो बार मिल जाएगा, प्लीज ये मदद कर लीजिए, ये कर लीजिए, तो मदद मिल जाएगा। लेकिन लगातार मुझे मदद आवश्यकता है तो फिर जितना मैं मदद करती जाऊंगी, जितना मैं देती जाऊंगी, उतना मुझे मदद मिलता जाएगा। यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाता है, जिसको मैं मदद करती हूँ ना, कंडीशन रख लेते कि इससे ही मुझे मदद चाहिए। ये कंडीशन जब रखेंगे ना, वहां गड़बड़ हो जाता है। ऊपर से तो कहेंगे हमें तो निस्वार्थ रूप से उसकी मदद की थी, नो एक्सपेक्टेशंस, कहते तो है लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ होता जरूर है। मान लीजिए आपका फ्रेंड है और उसको बहुत मदद की जरूरत थी, पैसों की मदद, फिजिकल मदद, हर तरीके से मदद की जरूरत है, क्योंकि वो ब्रोक हो गया, जैसे बैंक करप्ट हो गया था, तो इसलिए मदद की जरूरत। तो आपको तरस आया उसके ऊपर, तो उसको कहा चलो मदद कर लेते हर तरीके से, थोड़ा बहुत पैसा भी दिया, थोड़ा मदद की, नौकरी दिलाई, ये किया वो किया, जरा कुछ किया, तो उसको फिर से एस्टैब्लिश होने में आपने मदद कर ली। कहने में तो कहा कि मुझे मेरा फ्रेंड है वो, इसलिए निस्वार्थ रूप से मैंने उसकी मदद की, चलो कोई बात नहीं। दो साल के बाद आपको कुछ मदद की, इतने बड़े लेवल की नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत पैसों की जरूरत थी आपको, राइट? तो आप किसके पास जाएंगे, किसके पास, किसको, किसकी याद, किसको याद करोगे आप? उसी को याद करेंगे, क्योंकि अभी तो वेल एस्टैब्लिश्ड है वो, उसी को याद करेंगे। क्यों, इतने सारे फ्रेंड्स हैं, उनको छोड़कर घुस की याद क्यों आई? हाँ, तो ये अथॉरिटी फील करते हैं हम कि मैंने उसकी मदद की थी ना, तो अभी उसको मदद करना पड़ेगा। भले बोलते नहीं है, लेकिन फिर उसी को अंदर वो भावना है, उसको मदद करना पड़ेगा। तो वो जाकर के कॉन्टेक्ट किया उसको और कहा कि ऐसे इश्यू है तो मुझे मदद चाहिए। उसके अपनी कुछ मजबूरियां, उसने मदद नहीं कर पाया, तो आपके अपने मन के अंदर क्या होगा? बहुत गुस्सा आएगा। देखा, लोगों ने कहा था ये बहुत स्वार्थी है, नहीं करना चाहिए, करना मदद, ये वो, बहुत गुस्सा आया। और फिर कहा, अपने आप से कहा कि दुनिया ही स्वार्थी है, तो आज के बाद मैं किसी की मदद नहीं करूंगी, ये वो, बहुत गुस्से, ये निर्णय ले लिया अपने लाइफ के लिए, मैं किसी की मदद नहीं करूंगी आज के बाद। गलती कहाँ हुआ, गलती किसकी है? एक्सपेक्टेशंस रखा था, राइट? एक्सपेक्टेशंस के बिना कोई करता है क्या कुछ? केवल भगवान एक्सपेक्टेशन के बिना करता है। आप लोग भी इतने दूर आए, 5 दिन अपने लाइफ से निकाल के या आए, कुछ एक्सपेक्टेशन रख करके आए थे? नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। एक्सपेक्टेशन रख के तो आए हैं कि यहाँ जाएंगे, कुछ सीखने को मिलेगा, मेडिटेशन करेंगे, मन की शांति मिलेगी, एक्सपेक्टेशन के रख करके आए। और एक्सपेक्टेशन अगर फुलफिल होता है तो दोबारा सोचते हैं आप, आने के लिए सोचते हैं, ठीक है नेक्स्ट ईयर फिर आएंगे या फिर कभी भी आएंगे, अगर एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होता है, बकवास है, नहीं जाना है, ये है ना। तो हर कर्म जो हम करते हैं ना इंसान, तो एक्सपेक्टेशन रख करके करते हैं, कोई सूक्ष्म रूप से करते हैं या स्थूल रूप से एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सपेक्टेशन रखना बुरी बात नहीं है, एक्सपेक्टेशन रखेंगे तभी तो हम कुछ कर पाते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रखना उसी से चाहिए वो रॉन्ग हो जाता है। कर्मों की गुह्य गति क्या कहता है, कर्मों की गति क्या कहता है, जो आप दुनिया को दोगे वो लौटकर आपको मिलेगा, है ना। आप सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा, है ना। ये कभी लिखा है क्या, उसको दिया है तो उसी से आपको मिलेगा, लिखा है कहीं नहीं, है ना। मैंने दे दिया, कहीं से भी मुझे जब आवश्यकता पड़ेगी तब मुझे मिल जाएगा। जब ये एक्सपेक्टेशन है ना, तो मुझे देने के लिए मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि मुझे मिलेगा ना। अगर कुछ मिलना ही नहीं तो मैं करना क्यों है फिर, राइट। लेकिन इसी से मिलना है वो रॉन्ग है, इसीलिए देते चले देते चले देते चले। सुख चाहिए तो सुख दीजिए, प्यार चाहिए तो प्यार दीजिए, रेस्पेक्ट चाहिए तो रेस्पेक्ट दीजिए। देते जितना हम देते जाएंगे, सहयोग करते जाएंगे, तो वो हमारे अपने जीवन में वो भरपूर होता जाएगा। कंडीशन नहीं रखना है, बस देते चले देते चले, वो दे या ना दे देते चले, ठीक है। हाँ जी, हाँ कर सकते हैं, वो तो देता ही है, एक्सपेक्टेशन रखे या ना रखे वो तो देता ही है ना। जैसे सागर, सागर के पास अब 100 किलोमीटर दूरी पर खड़े होकर के सोचे ठंडी हवा दो ठंडी हवा दो, नहीं मिलेगा। आप बिना एक्सपेक्टेशन सागर के किनारे जाके खड़े हो जाओ, आप बोले या ना बोले ठंडी हवा तो ऑटोमेटिकली मिलेगा, है ना। तो केवल बाबा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं कि मुझे शांति दे प्रेम दे, ये कुछ भी जरूरत नहीं, केवल उनके सान्निध्य, उनके साथ कनेक्ट हो गए तो सारा कुछ है ना। मांगना नहीं है ना यहाँ, तो केवल कनेक्शन जोड़ना है, राइट। चलो ठीक है, तो ये है अष्ट शक्तियां। जब अष्ट शक्तियां हम धारण करते हैं तो आत्मा जैसे डायमंड हो जाती है, जैसे खान से जब डायमंड निकलती है ना, काला पत्थर होता है। और डायमंड की दो विशेषताएं हैं, कौन कौन से, एक तो डायमंड बहुत हार्ड है और उसको काटने के लिए डायमंड ही चाहिए, लोहे से या कुछ ऐसे काट नहीं सकता, लो ये डायमंड ही चाहिए, बहुत हार्ड रॉक है। और दूसरा है बहुत खूबसूरत है ना, उसकी स्पार्कल जो है वो दूर दूर तक पहुंचता है। आत्मा भी बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है और बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसको क्या करना है, डायमंड जैसे तराशते हैं ना, थोड़ा सा एंगल से काटा थोड़ा सा तराशा। तो आत्मा ओरिजिनली पावरफुल है, केवल हमें थोड़ा बहुत नेगेटिविटी बेस थोड़ा बहुत यहाँ जमा पड़ा है ना, उसको साफ करके ठीक करके पॉलिश करेंगे ना, फिर से देखना आत्मा डायमंड जैसे चमकना शुरू हो जाएगा। उसमें भी देते चले, ये नहीं है कि उसी से चाहिए, है ना। जब मुझे चाहिए मिल जाएगा, क्योंकि मैंने दिया हुआ है, मेरा कर्म ही इतना श्रेष्ठ है तो मुझे समय पर सब कुछ मिलना ही है। बिना एक्सपेक्टेशन का रखते करते जाएंगे तो भरपूर मिलता जाएगा। जैसे एक बार दादी जानकी से कोई इंटरव्यू कर रहे थे, उस समय शायद कुछ ऐसे बड़ी घटना, निर्भया जैसे कुछ बड़ी घटना घट गई थी या कुछ ऐसा था। जर्नलिस्ट आई तो फिर ऐसे बातें चल रही थी, प्यूरिटी के बाद अलग बात ये बात। तो उस जर्नलिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा दादी जानकी से, दादी अगर आपके साथ ऐसी घटना होती तो जैसे दादी ने शायद माफ करना मना क्षमा करना ये बात चल रही होगी, तो दादी को पूछा तो दादी को कहा कि दादी अगर आपके साथ ऐसी घटना घटती तो आप क्या करते? पता है दादी ने क्या जवाब दिया? पता है क्या? मेरे साथ ऐसी घटना होगी ही नहीं, मेरा कर्म ही इतना श्रेष्ठ है तो मेरे साथ ऐसी घटना घटेगी नहीं। तो कर्मों पर आपका विश्वास होना चाहिए, अच्छे कर्म करते चले तो अच्छा ही होगा आपके साथ, बुरा कर्म कभी भी आपके साथ नहीं होने के ही नहीं, क्योंकि मेरे कमाई है इतना इतना किया है ना। ठीक है, ओम शांति।